بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج ہم انداز جہاں میں پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے زیر عنوان گفتگو کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے علاقے گلگت میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام پر احتجاج کا سلسلہ جاری تھا کہ کوئٹہ میں بھی ایک بار پھر شیعہ مسلمانوں پر تسلسل کے ساتھ منظم طور پر حملے شروع کر دیے گئے. بتایا جاتا ہے کہ کوئٹہ میں گزشتہ چند دنوں کے اندر عورتوں اور بچوں سمیت تقریباً 30 افراد جاں بحق کیے گئے ہیں. کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کافی عرصے سے شیعہ مسلمانوں کو, خاص طور پر ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے شیعہ مسلمانوں کو منظم طور پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہزارہ برادری نے کئی بار پارلیمنٹ کے سامنے اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا ہے اور لیکن ان کے احتجاج پر کوئی توجہ شاید نہیں دی گئی ہے. کوئٹہ میں شیعہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی ہزارہ برادری کے خلاف منظم دہشت گردی کا نیا سلسلہ ایسی حالت میں شروع ہوا ہے کہ ابھی گلگت بلتستان کے حالات پوری طرح سے معمول پر نہیں آ سکے ہیں. قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ گلگت سے لے کر بلتستان تک جو منظم دہشت گردی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, اس سلسلے میں احتجاج اور مظاہرہ کرنے والوں کو پاکستان کے میڈیا نے بھی کسی حد تک نظر انداز کیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار نذیر حسین صاحب موجود ہیں. گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں. اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے علی جعفر زیدی صاحب, اور اسی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین عبد الخالق ہزارہ صاحب سے. تو چلتے ہیں اسلام آباد جہاں نذیر حسین صاحب موجود ہیں. نذیر حسین صاحب السلام علیکم.
جی شرافت صاحب السلام علیکم.
جناب یہ جو سلسلہ دہشت گردی کا نیا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اور جس کا دائرہ گلگت سے لے کر کوئٹہ تک پھیلا ہوا ہے, اس میں کون سے عناصر اور عوامل کار فرمائیں؟
شرافت صاحب ابھی تو موجودہ حالات میں جو عوامل اور عناصر ہیں وہ تو کچھ اور ہیں, لیکن ہمیں اس کا تانہ بانا جو ہے وہ 1980 کی دہائی میں ڈھونڈنا پڑے گا جب افغان جہاد کے لیے پوری دنیا سے یہاں پاکستان میں جہادیوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اور انہیں مختلف قسم کی ٹریننگ دی گئی تھی, اور پھر اس ٹریننگ کے بعد افغان جہاد شروع ہوا, پھر کشمیر جہاد شروع ہوا, اور یہ 9/11 کے بعد جب یہ پالیسی ریورٹ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی لینگویج میں یو ٹرن کہتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی میں, تو یہی جہادی ایلیمنٹ جو تھے انہوں نے انٹرنل جہاد کرنا شروع کر دیا تھا, یعنی کہ اندر سے جہاد کرنا شروع کر دیا تھا, اور 1980 کی دہائی سے لے کر اب تک ایک ایسی پود تیار ہو چکی ہے جو کیا کہتے ہیں دہشت گردی, مذہبی منافرت, انتہا پسندی اور فرقہ وارانیت کو ہوا دے رہی ہے, اور اس میں بیرونی عوامل بھی شامل ہیں, اندرونی عوامل بھی شامل ہیں, لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے بارڈرنگ ایریاز ہیں, گلگت ہو گیا جو بارڈر کرتا ہے چائنا سے, پارا چنار ہو گیا جو بارڈر کرتا ہے افغانستان سے, اور اس طرح جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری ہے جو بارڈر کرتا ہے ایران سے اور افغانستان سے, وہاں پہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ एक तो ये है कि डेफिनेटली ऐसे एलिमेंट्स हैं, मैं इसको सुन्नी शिया तफरका या सुन्नी शिया फसाद की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर सुन्नी शिया फसाद होता लाहौर में भी होता, कराची में भी होता, हैदराबाद में भी होता, दूसरे शहरों में भी होता, लेकिन ये एक इंतहा पसंदी की एक इंतहा है जो ये समझते हैं कि जो शिया मुसलमान हैं वो बहरहाल किसी तौर से भी उनके उनके नज़दीक काफिर हैं और उन्हें मारना जो है जन्नत दिलाने के मुतरादिफ है। तो ये जो इंतहा पसंदी है इसको ख़त्म करना जो है वो एक बहुत बड़ा मरहला और बहुत बड़ा एक सानिया है हमारे यहाँ। और दूसरी तरफ से मैं भी यही कहने की कोशिश करूँगा कि हुकूमत की भी कोताही है कि हुकूमत ने बर वक्त इकदाम नहीं किए जिसके सिलसिले में ये चीज़ें पेश आती हैं। देखें, जब ये गिलगित का वाक़या होता है तो कोहिस्तान में होता है, कोहिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है और अल्टीमेटली इसका असर जो है पूरे गिलगित में और स्कर्दू में और पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है। अभी बजाय इसके कि वहाँ पे हालात को ठीक करने के लिए वहाँ टेररिस्ट को या जो लोगों ने ये इकदाम किए थे उनको पकड़ा जाए, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी ज़राए हैं आमदोरफ्त के, वो उसका एक ही रूट है, एक ही तरीके से जाते हैं। तो बजाय ये कि उन लोगों को, अनासिर को गिरफ़्तार किया जाता, उनको वहाँ पे एक हफ्ते से कर्फ्यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो कर्फ्यू की कुछ नरमी की गई है, लेकिन असबाब और अवामिल जो हैं वो वही हैं जो 1980 में थे और जिसकी वजह से एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है जो इंतहा पसंदी पे यकीन रखती है, जो वायलेंस पे यकीन रखती है, जो मजहबी मुनाफरत पे यकीन रखती है। और इससे जो है ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अंदरूनी तौर से खलफशार पैदा हो रहा है, बल्कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिसमें चीन भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है और ईरान भी शामिल है, उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की भी एक कोशिश, मुजरमाना कोशिश की जा रही है। और दूसरा, क्वेटा में ख़ास तौर से जो हज़ारा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ अनफॉर्चुनेट, वो उसको मैं अपनी ज़बान में एथनिक क्लिनजिंग कहूँगा कि वहाँ शिया भी हैं और ख़ास तौर से जो हज़ारा कम्युनिटी हैं उसको पिछले एक साल से टारगेट किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का मीडिया जो है इस सिलसिले में कोई काम नहीं कर रहे। और अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है, मरकज़ में भी और सूबा बलोचिस्तान में भी, उनके एक सेनेटर ने, लश्करी रईसानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है इसी सिलसिले में कि वहाँ पर दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उसी तरह हज़ारा कम्युनिटी के जो एक MNA थे नासिर अली शाह साहब, उन्होंने कई दफ़ा धरना भी दिया, कई दफ़ा मुजाकरात भी किए और अल्टीमेटली उन्हें भी रिज़ाइन करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना पड़ेगा कि बैरूनी अवामल भी जो हैं इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं। एक माइंडसेट है, उसको चेंज करने की असल ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर आखिरी जुमला यहाँ पे कहूँगा कि ये मजहबी मुनाफरत जो है ये शिया सुन्नी फसाद नहीं है, बल्कि एक ख़ास ग्रोह है, एक मखसूस टोला है जो शायद एक फ़ीसद भी नहीं है पाकिस्तान में, और वही वो इस चीज़ को हवा दे रहा है। और इस सिलसिले में ये भी बता दूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत ने 1980 की दहाई में भी, 1990 की दहाई में भी जो एक वायलेंस लेड पॉलिसी अपनाई थी, उसके मुजमरात और उसके असरात जो हैं वो आज सामने आना शुरू हो गए।
बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब। और नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो में बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर अली जाफ़र ज़ैदी साहब मौजूद हैं। ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम।
नज़ीर साहब की गुफ्तगू अगर आपने मुलाहिज़ा फरमाई हो तो उसमें उन्होंने एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया कि ये जो शिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का सिलसिला है, बदअमनी का सिलसिला है, ये गिलगित, कोयटा यानी बलोचिस्तान या पारा चनार देखा जाए तो ये सारे जो हैं वो सरहदी इलाके हैं, और सरहदी इलाकों को जो नाअमन बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे फिर क्या आपको कुछ बैन अलाक़वामी साजिश भी इसमें नज़र आती है?
ये साजिश ही बैन अलाक़वामी है और ये आज से नहीं, ये उस वक्त से साजिश शुरू हुई जब दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड के आलमी इस्तेमार ने ग्लोब का इंचार्ज बनने का रास्ता इख्तियार किया, सोवियत यूनियन को तोड़ थोड़ा गया, अंदर से भी वो टूटा, और उसके बाद ईरान का जो इनकलाब है उसके बहुत ज़्यादा दूरस असरात हैं मगरबी इस्तेमार पर। ईरान ने वो कुदरती वसाइल और जो उसकी जुग्राफियाई अहमियत है उसका इस्तेमाल अमेरिका से लेकर अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू किया, और आज ईरान का जो अपना कुदरती वसाइल और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके अपने मुल्क और अपने अवाम के लिए है। चुनाचे ये बात काबिले बर्दाश्त नहीं हो सकती थी आलमी इस्तेमार के लिए, और उन्होंने 10 साल तक तो सद्दाम के ज़रिए जंग मुसल्लत किए रखी, उसके बाद आगे यहाँ तक के इराक़ पर जो हमला है मैं समझता हूँ वो भी ये समझ के किया गया था कि 2 हफ्ते के अंदर हम ईरान पहुँच जाएंगे, और उसके बाद आज तक ये सैंक्शंस और जंग की धमकियाँ और ईरान पर हमले की धमकियाँ वगैरह वगैरह, ये सारा मामला ईरान को चारों तरफ से घेरने की साजिश है। ये यकीनन बैनुल अक्वामी साजिश है जिसमें उस इलाके के जो हुक्मरान हैं वो उसका हिस्सा हैं। बदकिस्मती से ये मुल्क पाकिस्तान, जिसके पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लिए हम जैसे पाकिस्तान में जितने भी लोग थे और हैं वो सारी उम्र पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम करते रहे और आज तक कर रहे हैं, लेकिन उनका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अवाम का हुक्मरानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मीडिया का जो रोल है वो इस वक्त अवाम को गुमराह करने का रोल है। वो रोल जो उसको प्ले करने चाहिए था वो नहीं कर रहा, बल्कि वो दो मुर्गे लड़ाते हैं वहाँ के एंकर्स सामने बिठा कर जिसका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। 8वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम है, 20वीं कुछ समथिंग, चौधरी इफ्तखार की बहाली वगैरह वगैरह, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जिसका अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में जो अमेरिका और मगरबी उसके इत्तेहादी हैं और नेटो की वहाँ फ़ौजें मौजूद हैं उनके अजाइम और हदफ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट ही नहीं बल्कि एक गुलाम मुल्क बन चुका है। उसमें एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है, और आज पाकिस्तान में मगरबी इस्तेमार को उसी तरह का फ्री हैंड चाहिए जैसा कि उसको इराक़ में मिला, जैसा कि अफ़गानिस्तान में मिला हुआ है। अब वहाँ जो थोड़ी सी रेसिस्टेंस है वो अभी तक अवाम की तरफ से तो है ही, यानी वो बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, और जो फ़ौज का एलिमेंट है उसके अंदर भी अमेरिका की हक़ में और मुखालफत में भी ग्रोहबंदी है। और जो अफसोसनाक बात है वो ये कि वो मजहबी तंजीमें जो कि सऊदी अरब के ज़रिए अमेरिका ने वहाँ खड़ी की थी पाकिस्तान बनते ही, बनने से पहले जमात इस्लामी से लेके और सिपाही साहबा तक और तालिबान तक, ये तमाम मजहबी तंजीमें अमेरिका के इंटरेस्ट की सबसर्वियंट हैं। इनको असला, इनको पैसा, इनकी सो मच सो कि तालिबान का जो सिलेबस है वो भी नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से छप कर आता है। तो ये जितनी मजहबी तंजीमें हैं ये इसलिए खड़ी की गई, अलकायदा की बोगी क्रिएट की गई, उसामा की बोगी क्रिएट की गई, ताकि दुनिया में जहाँ जहाँ भी अमेरिका ने अपनी फ़ौजें उतारनी है वो इन बोगीज़ के हवाले से वहाँ पर आप देखें, जहाँ कहीं भी अमेरिका पहुँचना चाहता है उससे पहले अलकायदा की तरफ से बम फटने के ऐलान होते हैं, फिर वहाँ पर अमन को ख़तरा होता है, फिर वहाँ पर जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है, और बिलाखिर वहाँ जमहूरियत और अवाम की बचत के लिए उनको महफूज करने के लिए नेटो की अफवाज वहाँ पहुँच जाती हैं। चुनाचे ये जितने मजहबी तंजीमें हैं ये और अमरीकी मफादात लाजिम व मलजूम हैं, ये एक दूसरे की हिफाजत भी करते हैं, एक दूसरे के हदफ का को हासिल भी करते हैं, और हदफ इनका एक ही है, ईरान के गिर्द घेरा डालना उसमें पाकिस्तान को अनस्टेबल करना और गैर मुस्तहकम करना, जो कि हमने पिछले कई सालों में, दो दहाइयों में कम से कम, उसको गैर मुस्तहकम होते देखा। और ये जो मजहबी मनाफरत या मजहबी तंजीमों की इब्तदा है, इसकी जो दाग बेल है वो पहले तो पड़ी थी, लेकिन ज़ियाउल हक ने मुल्क के अंदर जो छेद हैं पहले हो रहे थे, उसने तो मुल्क की जो किश्ती है उसमें इतना बड़ा सुराख किया है कि आज वो पानी उसमें भरता जा रहा है और कोई किसी तरह से वो ना रोकने को कोई तैयार है और ना ही वो रुकने वाला है। अगर आपके इल्म में होगा, यकीनन होगा, कि ग्रेटर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल जो कायम की गई है, वो बरतानिया और अमेरिका की मदद से उसमें शामिल है। उसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो कल्लात का, नवाब कल्लात का पोता है, और उसकी जो गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल है उसका हेड ऑफिस तेल अबीब में है, और ये चीज़ें छप चुकी हैं, ये रिकॉर्ड पर हैं। चुनाचे बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल जो पर्सपेक्टिव में देखते हुए ये फिर बात समझ में आती है कि उस इलाके में अगर ईरान, अमेरिका और बरतानिया और यूरोप का उसी तरह से खिदमत गुजार रहता जैसा कि शाह ऑफ ईरान के ज़माने में था, तो ये सारे मामलात गालबन पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गिलगत बल्तिस्तान में आज ना हो रहे होते। तो ये जो मजहबी मनाफरत बिल्कुल ये नहीं है, ये वो बोगीज़ हैं जो क्रिएट की गई हैं। इराक़ में कोशिश की गई इराक शिया सुन्नी झगड़ा कराने की, यहाँ पर की जा रही है, ये कामयाब तो इसलिए नहीं होती कि ये एक जाली कंट्रडिक्शन है, एक असली तजाद नहीं है जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, तजाद वहाँ पर कुछ और है। तो उसमें ये जो इनकी कोशिश है ये कामयाब तो नहीं होती, लेकिन मुल्क कमज़ोर हो जाता है, और मुल्क जब कमज़ोर होता है तो फिर चीज़ों को अपने हक में इस्तेमाल करना इस्तेमाल के लिए आसान हो जाता है। आज बलूचिस्तान में जो सूरत है, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, हमारे कुलीग थे गौस बख्श बजिन, जो हमेशा साम्राज्य के ख़िलाफ़ रहे, हमेशा अवाम मेहनतकश मज़दूर किसान की बात करते रहे, लेकिन उनके जो बरखुरदार हैं वो भी जब नेटो के हेडक्वार्टर आते हैं और यहाँ लंदन में बड़े फ़ख्रिया बताते हैं कि मैं, नेटो ने मुझे इनवाइट किया था, तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि शेम ऑन यू बिकॉज़ तुम्हारे फादर तो इतने बड़े रेवोल्यूशनरी थे। तो आज बलूचिस्तान का इस तरह का एलिमेंट भी अमेरिका का खिदमत गुजार बन चुका है, जितने वहाँ के सरदार हैं वो सब के सब अमेरिका की गोद जेब में हैं, हुक्मरान जो पाकिस्तान के हैं वो अमेरिका के सब सर्वियंट हैं, अमेरिका के मफादात का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। और ये देखे बग़ैर कि आज अगर गिलगित बल्तिस्तान में वो एलिमेंट जो कि अमेरिका ने मजहबी तंजीमों की शक्ल में क्रिएट किया था, वो अगर वहाँ कंट्रोल करता है, तो फिर चीन की तमाम वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा, यानी दोस्ती और उस इलाके में, उस रीजन में फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, वो सारे फिर बिगड़ जाएंगे, और उसमें फिर पाकिस्तान के साथ जो चीन की इतनी बड़ी दोस्ती चली आ रही है तारीखी, उसको भी ख़तरा लाहक होगा। और ये जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ किलिंग ही नहीं हो रही शियों की, बल्कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। पहले वहाँ रेशो था 80% शिया आबादी थी, आज वहाँ पर बाहर से लाला कर वो हजरात जो अपने छोटे भाई की शलवार और बड़े भाई का कुर्ता पहन के, सलफ़ी मेरी मुराद, जो फिरते हैं अपने तरह की शरीयत को दुनिया में नाफिज करने के लिए, उनको लाकर बसाया जा रहा है, और वहाँ की डेमोग्राफी जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज की जा रही है, ताकि वो इलाका इस तरह के तालिबान, जो कि वो सलफीज तालिबान जो कि सऊदी अरब के कंट्रोल में हैं और इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में हैं, वो वहाँ आबाद हों, और फिर بہت آسان ہو جائے اس پورے خطے کا جو کھیل ہے مستقبل کا اس کو کھیلنا پھر مغربی استعمار کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس میں یہ میں پھر ریپیٹ کروں گا, افسوسناک بات ہے کہ وہاں کے حکمران اس کا حصہ ہیں جبکہ پاکستان کے عوام اس کا حصہ نہیں ہیں. پاکستان کے عوام امریکہ کی فورن پالیسی کے مکمل خلاف ہیں.
بہت بہت شکریہ زیدی صاحب. اور ناظرین, ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین عبد الخالق ہزارہ صاحب سے. ہزارہ صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم
جناب. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئٹہ میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟
اچھا, کوئٹہ میں صورتحال انتہائی گمبھیر, غیر یقینی صورتحال ہے.
جی,
سابقہ تسلسل کے ساتھ جس طریقے سے ہزارہ قوم کی یہاں پہ نسل کشی جاری ہے, تو اس حوالے سے پورا کوئٹہ شہر ڈسٹرب ہے. اس وقت کوئٹہ شہر میں کاروباری زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. لوگ اسکول کالجز بزنس کے لیے جانے سے کتراتے ہیں, اور یہاں پہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو عدم تحفظ کا غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. تو یہ صورتحال یہاں پہ کوئٹہ میں ہے, یہاں پہ ان کو پیدا کیا گیا. جی,
آپ کے خیال میں یہ ابھی جو حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سلسلے میں کوئی نشاندہی ہوئی ہے کہ کس گروہ کا یا کن لوگوں کا کام ہے یہ؟
اچھا جناب, یہاں پہ ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ سابقہ 12 سالوں سے ہزارہ قوم کی یہاں پہ تسلسل کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے, اور نہ صرف ہزارہ قوم کی بلکہ شیعوں کا. پہلے مختلف جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مطلب مختلف اقوام کے جو شیعہ ہیں وہ ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے, لیکن سابقہ 4 سالوں سے مسلسل کے ساتھ صرف ہزاروں کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں. اور اس میں ایک کالے دم تنظیم جو لشکری جنگلی کے نام سے ہے وہ ان کو جو ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف بدبختانہ یا بدقسمتی سے ہماری حکمران گو کے زیدی صاحب نے جس طریقے سے ان کا تجزیہ تھا وہ قابل احترام ہے, لیکن یہاں پہ ہماری حکمران جو جس طریقے سے وہ حکمرانی کے دعوے کر رہے ہیں تو وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا ہے. اسٹیٹ کے اندر, ریاست کے اندر جو ہماری تحفظ, ہماری جان و مال, ننگ و ناموس کے حوالے سے ریاست ذمہ دار ہے, اور ریاست کے اندر حکومتیں ہوتی ہے. تو ہماری حکومت ایک نائل حکومت ہے, اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ اس سے زیادہ نائل ہے. جب ہماری چیف ایگزیکٹو اور صوبائی حکومت جو ہے نائل ہو تو لامحلہ جو ہے مطلب ان کے انڈر جتنے بھی ادارے آتی ہیں تو وہ بھی نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو سابقہ 10-12 سالوں سے صرف 2 ٹارگٹ کلرز اس میں اریسٹ ہوا تھا. جو 2 ٹارگٹ کلرز مین ماسٹر مائنڈ تھا, عثمان سیف اللہ اور شفیق الرحمان, یہ 2007 کے 7 محرم میں اے ٹی ایف جیل میں تھا, اینٹی ٹیررسٹ فورس کے جیل میں تھا, اور یہ جیل کینٹ ایریا میں, چاؤنی کے ایریا میں ہوتا ہے. لیکن یہاں سے 7 محرم کو ان دونوں کو فرار کروایا گیا, اور جس طریقے سے ان کو فرار کروایا گیا اس کے بعد کوئی بھی آج تک نہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے, نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, نہ ذمہ داروں کو کوئی سزا ملی ہے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ اس طرح کے 12 سالوں میں صرف 2 ماسٹر مائنڈ اریسٹ ہوئے تھے, جو جنہوں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا, اور اے ٹی ایف جیل سے کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی, لیکن وہاں سے ان کو جو ہے مطلب بگایا گیا, ان کو جو ہے مطلب رہا کیا گیا. جس طریقے سے وہ ڈرامہ چلا وہ سب عوام کے سامنے ہے. وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اس میں کچھ ایسی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں, حکومت میں کچھ ایسی ایسے ایلیمنٹس تھے جنہوں نے ان کی رہائی میں, ان کو چھڑانے میں, ان کو بگانے میں تو معاونت کی ہوگی. تو اس طرح کا ایک ماحول ہے یہاں پہ.
جی, بہت بہت شکریہ. لائن پہ رہیے گا ہزارہ صاحب. نذیر حسین صاحب, جناب یہ کوئٹہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو موجودہ حالات ہیں وہ ان کو دیکھیں, اور گلگت میں جو کچھ ہوا ہے, آپ کے خیال میں یہ ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں اور ایک ہی مقصد کے تحت وہ گلگت اور کوئٹہ میں سرگرم ہیں, یا یہ الگ الگ گروہ ہیں اور ان کے مقاصد الگ الگ ہیں؟
نہیں اشرف صاحب, مقاصد تو بہرحال ایک ہی ہیں, لیکن گروہ الگ ہو سکتے ہیں, और उनके ताने बाने जो हैं वो यकीनन एक ही तरफ इशारा करते हैं, चाहे उसके अवामिल जो हों अंदर हों, पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान के बाहर हों, लेकिन उनका मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि एक तो एथनिक क्लिनजिंग की जाए और ये जो शिया मुसलमान हैं इनमें एक एक किस्म का फियर क्रिएट किया जाए, साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट किया जाए, ताकि ये खड़े होकर दोबारा जो है अपना मुकाबला ना कर सकें। अब्दुल खालिक की बातों से दो चीज़ें बड़ी अहम निकलती हैं। देखिए कि गुज़श्ता 10-12 सालों से जिस तरह वहाँ की एथनिक कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ के लोग नहीं हैं, इनहेबिटेंट्स लोकल नहीं हैं, उनके घरों में पम्फलेट बांटे गए, भेजे गए, वहाँ से लोगों को नकल मकानी करवाने पर मजबूर किया गया। जो लोग तो निकल के वहाँ से आ गए उनको तो ठीक है, लेकिन जो नहीं निकले उनको फिर उन्होंने टारगेट किलिंग कर दी। और इस वक्त हज़ारा कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो हज़ारा भी हैं, एथनिक कम्युनिटी भी हैं, माइनॉरिटी में भी हैं और शिया भी हैं, लिहाजा उनको तो बहरहाल एक कंट्रोल किया जा रहा है इस टारगेट किलिंग से, चाहे वो ज़ायरीन पे हमले हों, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी पे हमले हों, वो तो एक लामहाला चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ अभी जैदी साहब ने बड़ी अहम बात की थी कि एक वक्त वो था जब गिलगित और बल्तिस्तान एक था और उसमें जो शिया मुसलमान थे उनकी 80% से ज़्यादा आबादी थी, लेकिन गुज़िश्ता कोई 2 दहाइयों में वहाँ की डेमोग्राफी जो है बिल्कुल तब्दील होकर रह चुकी है। और आप परेशान होंगे कि 80% जो कारोबार है गिलगित में वो नॉन लोकल्स के पास, यानी सारे के सारे पश्तूनज़ हैं वहाँ पे। इवन जो स्कर्दू है जो बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर कहलाता है, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो वो मेजॉरिटी 99% शिया पॉपुलेटेड एरिया था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे सऊदी हुकूमत की मदद से मदरसे बने हैं और मदरसों से मुनाफरत फैलाई जा रही है, वहाँ पे उनके ब्रांड का इस्लाम जो है वो फैलाया जा रहा है। तो ये मकासद तकरीबन जो भी ग्रुप हैं उन दोनों के, चाहे वो क्वेटा में हों, चाहे पाराचनार में हों या गिलगित में हों, एक जैसे हैं। और दूसरी बात ये भी बड़ी अहम है कि गिलगित बल्तिस्तान पे ये कोई पहला हमला नहीं है। शायद हमारे नाज़रीन को ये मालूम हो कि 1987 में जब ज़ियाउल-हक़ की हुकूमत थी तो उस वक़्त गिलगित पे एक पूरे का पूरा लश्कर लेके जो हैं ये लोग गए थे, उसमें 20,000 अफराद शामिल थे जो चलाल से, सवात से, चित्राल से, हर तरफ से आ गए थे। लेकिन गिलगित और बल्तिस्तान के मुसलमानों की जुर्रत को सलाम किया जाए कि उन्होंने हथियार ले लिए, बंदूकें ले ली, हर पत्थर ले लिए और इन लोगों को भागने पे मजबूर किया था। तो लिहाजा ये, और दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता 1400 सालों से ये हरकतें हो रही हैं, इनके अजाइम जो हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होंगे। लेकिन मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि एक तरफ से वो इस मुनाफरत को हवा दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, और जब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ होगा तो जाहिर है ईरान को भी खतरात पैदा होंगे और दूसरे मालिक को भी खतरात पैदा होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात अभी अब्दुल खालिक साहब ने यह भी फरमाई थी कि अव्वल तो टेररिस्ट पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़े जाते हैं तो उनको रहा कर दिया जाता है। अब देखें अजीब सूरत हाल है, बन्नू में अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले 600 बंदों को रिहा करके लेके जाया जा चुका है। तो कहाँ है स्टेट रेट, चाहे वो सूबाई हुकूमत की स्टेट रेट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट की स्टेट रेट हो, वो नज़र नहीं आ रही। जब अगर टेररिस्ट जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो एक जेल से अपने साथियों को रिहा करके ले जाएंगे तो फिर वहाँ का निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। और अभी जैसे बताया गया कि क्वेटा में 2 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके मुकाबले पंजाब में 150 से ज़्यादा टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आपको परेशानी होगी सुन के कि एक बंदा भी उनके खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं आया और अल्टीमेटली उन सबको रहा करके करना पड़ा हुकूमत को। तो ये एक सिस्टम ऐसा है जहाँ पे वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पे एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट किया जा रहा है ताकि उनका ब्रांड जो है, जो भी जिस तरह भी है, उसको ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाए। लिहाजा चाहे गिलगित हो, चाहे बल्तिस्तान हो, चाहे क्वेटा हो, चाहे पाराचनार हो और चाहे कराची हो, ये अवामिल अलग हो सकते हैं, ये ग्रुप अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो ये है कि शिया मुसलमानों को टारगेट किया जाए, उनको मेजर जो कलीदी जगह हैं उन पे ना फायज़ किया जाए, उनके डॉक्टर्स को, उनके इंजीनियर्स को और उनके साहिब हैसियत लोगों को टारगेट बनाया जाए ताकि वो उनको सपोर्ट ना कर सकें। लेकिन अब मरहला ये है کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ عوامل اپنے مضموم عزائم میں کامیاب ہو گئے تو لا محالہ شیعہ قوم کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو میں نے تقریریں یہاں اسلام آباد میں سنی ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شیعہ قوم اب ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اور اگر حکومت نے بروقت ابھی کوئی کاروائی نہیں کی تو شاید شیعہ قوم بھی اب ہتھیار لینے پہ مجبور ہو جائے، جس طرح ایک وقت آپ کو یاد ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوا تھا اور الٹیمیٹلی ایم کیو ایم نے ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیش آئے، لیکن حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ فوراً ایکشن لینا پڑے گا، اور یہ ٹیررسٹ جس قسم کے بھی یہ دہشت گرد جو مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو ہر حال میں گرفتار کرنا پڑے گا۔
بہت بہت شکریہ عبدالخالق ہزارہ صاحب۔ جناب آپ کیا کہتے ہیں، دہشت گردوں کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ عبدالخالق ہزارہ صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جی زیدی صاحب،
جی
یہ ایک بات میری گفتگو ہو رہی تھی ایک صاحب سے اسی مسئلے پر، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک مشکل یہ ہے کہ حکومت الگ ہے اور ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور ہے، حکومت اگر کچھ کرنا بھی چاہتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ لاچار ہو جاتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں انتہا پسند عناصر کا اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن یہ ایکسکیوزز ہیں، حکمران جو ہیں اگر وہ اپنی رٹ قائم کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہر حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کی جان اور مال کا تحفظ کرے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر جو وہاں بھی گروہ ہیں، اور گروہ اس حد تک بھی ہیں جنہوں نے طالبان کریٹ کیے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا وہ جھنڈا جو انہوں نے اٹھایا ہے اس کو لے کر ہم چلیں گے، اور ہم دہلی کے لال قلعے پہ بھی لگائیں گے، اور برطانیہ میں کوئن کا جو محل ہے اس کے اوپر بھی ہم جھنڈا وہ لہرائیں گے۔ تو یہ ایلیمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ سے مراد اگر فوج ہے تو اس میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے، اور اس کی جو سرپرستی ہے وہ بھی انٹرسٹنگلی ویسٹ ہی کرتا ہے، اور جو حکومت کے اندر لوگ ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں پنجاب میں دہشت گرد اریسٹ ہوتے ہیں، اور وہاں کا جو منسٹر ہے غالباً لا منسٹر، وہ وہاں جا کر ان کو رہا کروا کر لے آتا ہے۔ تو یہ حکومت کا بھی بہت سا حصہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی امریکی ایجنڈے کا وہ شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر اس کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور حکمرانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ شعوری طور پر اس پلان کا حصہ ہیں، اس کے وہ کارندے ہیں، اور اس کو وہ عمل درآمد کرنے پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، جبکہ بہت سے جو سیاستدان یا اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں وہ لاشعوری طور پر اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر جو جسٹیفیکیشنز ہیں وہ کئی طرح کی پھر آ جاتی ہیں۔ اگر حکمرانوں کے حق کا کوئی آدمی آپ کو ملے گا تو وہ کہے گا جناب ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دیتی۔ اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جناب اب تو پارلیمنٹ ہے، وہ سب ہے، حکومت تو وہ کر رہے ہیں، تو ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، انہوں نے ملک چلانا ہے، جو وہ کہیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آج ہمیں حکم دیں ہم ڈرون حملوں کو روک دیں گے، لیکن پارلیمنٹ کہتی ہے کہ بس ہم قرارداد منظور کریں گے اور ڈرون حملے بند ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ جو حکمران طبقات کی طرف کے لوگ ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ اپنا نقطہ، لیکن جو اصل بات ہے، جو ریئلٹی ہے، جو فیکٹس ہیں گراؤنڈ پر، وہ یہ ہیں کہ پاکستان روز بروز کمزور ہو رہا ہے. غریب آدمی غربت کی انتہائی بدترین سطح پر ہے, ملک کی سوورینٹی خطرے میں ہے, اور آپ کی حکومت, آپ کا نام, حکمرانوں کا نام پاکستان میں کرپٹ حکمرانوں کے طور پر یعنی دنیا میں جانا جاتا ہے, نااہل حکمران دنیا میں اس وقت سمجھے جاتے ہیں, اور ان کا میں افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ حکمران کسی بھی پارٹی کے ہوں, نہ ان کا عوام سے کوئی محبت اور تعلق ہے, نہ ہی ان کا کسی ملک پاکستان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق ہے, نہ ان کا عوام سے, نہ عوام کا ان سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہی ان کی وفاداریاں پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. چنانچہ ان سے آپ جو چاہیں کروا لیں, اگر ملک میں ایران کے گرد کوئی قلعہ کھڑا کرنا ہے تو پھر گریٹر بلوچستان بھی ہے, سیستان کا مسئلہ بھی وہاں چل پڑے گا, اسی طرح گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے, پنجاب میں جو ہو رہا ہے, کراچی میں جو ہو رہا ہے, تو یہ سب مل کر ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے, حکمران طبقات اس کا حصہ ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر. لیکن ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ملک نہیں ہوتا تو پھر فلسطینیوں سے آپ جا کر پوچھئے کہ نہ ان کی آئیڈینٹیٹی ہے, نہ ان کا کوئی, اتنی نسلیں گزر گئیں سٹرگل کرتے ہوئے کہ ان کو ملک مل جائے. ان کو ملک ملا ہوا ہے, اس کی اندر سے کھوکھلا کرنے پر یہ سب لگے ہوئے ہیں, جبکہ ان کی پہچان ہی پاکستان ہے. اگر پاکستان کمزور ہے, پاکستان نہیں ہے خدا نہ خواستہ, تو پھر یہ سب کے سب یہ کیا ہیں, ان کا یعنی دنیا میں کیا مقام ہوگا؟ شاہ آف ایران کو ہم نے دیکھا, اس کو مرنے کے لیے جگہ نہیں. امریکہ جو اس کا اتنا بڑا پشت پناہ تھا, دوست تھا, اس نے اس کو اپنے یہاں دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دی. تو یہ سب ماضی کو سامنے دیکھتے ہوئے حکمرانوں کو اپنے مستقبل کا, ملک کا, عوام کا کچھ ایسا تعین کرنا چاہیے جس میں ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان, ایک مضبوط پاکستان, کم از کم ایک سوورن پاکستان ایمرج ہو سکے, اور لوگ عزت سے, شرافت سے, یہ جو دہشت گردی ہے اس سے ہٹ کر اپنی روزمرہ کی زندگی سکون سے گزار سکے. لیکن بدقسمتی سے امریکن امپیریلزم یہ سب نہیں چاہتا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں. آج اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ عوام بدحال پریشان رہیں, حکمران اس کے تابع رہیں, اور وہ پورے گلوب پر, پورے علاقوں پر اس کا قبضہ ہو, بالخصوص ان علاقوں پر جہاں پر کے معدنی وسائل ہیں, تیل کے ذخیرے ہیں, وہ سب کے سب اس کو چاہیے. اور اس کے رکاوٹ میں اگر کوئی ایران ہے, کیوبا ہے, شاویز ہے, نارتھ کوریا ہے, یہ سب پھر اس کو قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے گرد وہ پھر گھیرا بھی تنگ کرتا ہے, ان کو دھمکیاں بھی دیتا ہے, ان پر جنگ بھی مسلط کرتا ہے. تو یہ سارا انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے اگر پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھ سکیں, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں مڈل کلاس کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اوپینین فارم کرنے کا اس کا رول ہے, وہ اوپینین فارم وہی کر سکتے ہیں, لیکن اوپینین فارم کرنے کے جو ادارے ہیں, پرنٹ میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے, وہ سب کے سب اگین سبسرویئنٹ ٹو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آواز نہ سنائی دیتی ہے, اور نہ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ رہبر یا رہنما نظر آتا ہے.
بہت بہت شکریہ زیدی صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ عبد الخالق ہزارہ صاحب سے رابطہ دوبارہ برقرار ہو گیا ہے. ہزارہ صاحب
جی,
جناب ابھی جو گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی, علی جعفر زیدی صاحب کی بھی اور نذیر صاحب کی بھی, ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کوئٹہ میں, گلگت میں, پارا چنار میں اور پاکستان کے دوسرے تمام علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بیرونی, بین الاقوامی اور سامراجی سازش کا حصہ ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟
اس میں گو کہ اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے, جس طرح ساتھیوں نے کہا, دوستوں نے کہا, ہم اپنی عموماً یہاں پہ اس پورے ریجن میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے अपनी नाहली को छुपाने के लिए हम एक ब्लेम गेम का सहारा लेते हैं। सवाल यह है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आज की बात नहीं है, 12 सालों से आज तक एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है, जो अरेस्ट हुआ है वो कहाँ पे है। दूसरी बात यह कि मैं मुझे दूसरे जगहों का इतना ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जहाँ तक कोयटे की बात है, यहाँ पे पूरे कोयटे में 5000 के लगभग पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले 5000 लोग हैं, इसमें 3500 लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे मिनिस्टर्स, उनके फैमिली वाले, उनके ऑफिसरों की निगहबानी में हैं। बाकी 1400 लोग जो है पूरे कोयटा शहर में 25 लाख आबादी के लिए इन्होंने डिप्लाई किया हुआ है। मैं अभी बात करता हूँ, पिछले साल हमारी यहाँ पे इंटरनेशनली मतलब हमने एक प्रोटेस्ट कॉल दी थी 1 अक्टूबर को, फिर सितंबर 12 और 13 सितंबर को हमने इस्लामाबाद में सैकड़ों की तादाद में यहाँ से कोयटे से इस्लामाबाद गए, वहां पे हमने प्रोटेस्ट किए, अपनी आवाज वहां पे उठाए और अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड कराए इंतहाई जमहूरी तरीके से। बाद में प्रेसिडेंट साहब के साथ जो हमारी बात हुई, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से वहां के वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिले की तरफ से यहाँ पे बलूचिस्तान में 26 मैन ऑफिसरों की कमी थी वहां पे, तो वहां से इस्लामाबाद से आर्डर भी हुई कि इन 26 ऑफिसरों को बलूचिस्तान भेजा जाएगा, लेकिन हमें आज तक वो मालूम नहीं है कि उन 26 ऑफिसरों को क्यों यहाँ पे डिप्लाई नहीं किया गया, क्यों यहाँ पे भेजा नहीं गया, क्यों यहाँ पे उनकी खिदमात को सराहा नहीं गया। तो सूरत हाल यहाँ पे कोयटा में मुकम्मल तौर पर हकूमत और हकूमती इदारों की नाहली उसमें सबसे ज्यादा शामिल है। दूसरी बात यह है कि हमारी सूबाई हुकूमत इतना बेहिस और नाहल है कि आज तक पूरे सूबाई असेंबली के जितने भी रिकॉर्ड में आप देख ले, जितने भी कत्ल गारतगिरी यहाँ पे हुई, जिस तरीके से दिन दहाड़े मासूम बेगुनाह लोगों को, उनकी दुकानों में सब्जी फरोशों को, हर हवाले से हर तबके।
जी हजारा साहब से राबता मुनकता हो गया है। नजीर हुसैन साहब, जनाब हमारे पास 2 मिनट का वक्त रह गया है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, इसमें आपकी नज़र में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं या दोनों में से कोई एक जिम्मेदार है?
तीनों जिम्मेदार हैं
जी
शराफत साहब, तीनों जिम्मेदार हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है, हुकूमत भी जिम्मेदार है और आवाम भी जिम्मेदार हैं। देखिए इस्टेब्लिशमेंट में, मैं ऐसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने वायलेंस को, इन टेररिस्ट ग्रुप को यूज़ किया है, रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया है, भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, तो इस्टेब्लिशमेंट इसमें ज़रूर कसूरवार है। हुकूमत इसलिए कसूरवार है कि हुकूमत अपना जो आहनी हाथ है वो इन पर नहीं डाल रही। जैसे अभी जाफरी जैदी साहब ने लंदन से फरमाया कि हुकूमत में मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत में हों चाहे मरकज़ी हुकूमत में हों, जो इन लोगों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं और इनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया, जो गिरफ़्तार भी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और तीसरे अवाम भी ज़िम्मेदार हैं। देखें ए पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मार्ज वजूद में आया था और यहाँ कोई सुन्नी शिया तफरका नहीं था, सब ने मिलकर एक एफर्ट की थी। इस वक्त शियों को अलग किया जा रहा है, सुन्नियों को अलग किया जा रहा है, बाकी फ़िरकों को अलग किया जा रहा है, तो अवाम किधर है? अवाम का क्या काम है? अवाम का क्या रोल है? सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? आपने अभी ख़ुद अपनी बात में कहा था, मीडिया का क्या रोल है? मीडिया इसको कितना हवा दे रहा है या कितना इसको उछाल रहा है या इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अभी जैसे गुज़िश्ता 1-7-8 दिनों से इस्लामाबाद में एक शिया मुसलमानों ने धरना दिया हुआ था, लेकिन बहुत कम मीडिया चैनल्स ने उसको हाईलाइट किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार है, हुकूमत भी ज़िम्मेदार है और अवाम भी ज़िम्मेदार है। जब तक अवाम की तरफ से, चाहे वो शिया हों चाहे वो सुन्नी हों चाहे वो किसी भी फिरके के लोग हों, अगर वो खुलकर सामने नहीं आएंगे इस मजहबी मुनाफरत के ख़िलाफ़, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, तो ये पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता दीमक की तरह चाड़ जाएगा। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही बहुत नाजुक हैं और अगर ये सूरत हाल रही तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद और ख़तरात शामिल हो जाएंगे। लिहाजा अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कभी इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया है तो अब खुदारा बंद कर दें और हुकूमत को चाहिए कि अपना आइनी हाथ लेके सामने आए, इनको गिरफ़्तार करें।
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نذیر حسین صاحب. ناظرین پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.